नमस्कार, मैं रविश कुमार। जिस किसी भी समाज में हिंसा और हिंसा का बदला लेने की जड़ें मजबूत होती हैं, जहां लोग इसे सही ठहराने में दिन रात जुटे रहते हैं, उसके असर में किसी को भी लग सकता है कि हिंसा करना सही है और इतिहास या वर्तमान की किसी घटना का बदला इस तरह से लिया जा सकता है। हिंसा की यह सोच समाज को अनिश्चित और असुरक्षित बना देती है। पता नहीं होता कि कब कौन कहां से आएगा, बंदूक उठाएगा और किसी को छलनी कर देगा। आतंक से लड़ने के नाम पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन देश के भीतर हिंसा के इन छोटे छोटे घरों को बनाने वाला समाज कभी आतंक से मुक्त नहीं हो सकता। मंगलवार की सुबह अमेरिका के टेक्सास प्रांत के एक शहर के प्राथमिक स्कूल में गोली चल गई। 19 बच्चों की हत्या हो गई है। 18 साल का साल्वाडोर रामोस किसी रेस्तरां में काम करता था। उसे जानने वालों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से चुप रहने लगा था। एक दिन पहले उसके रॉब एलिमेंट्री स्कूल में जाने की बात कही जा रही है, जहां का वह छात्र रहा था। इस स्कूल में सीनियर छात्रों को बुलाया गया ताकि वे जूनियर छात्रों से पंजा लड़ाते हुए उनका हौसला बढ़ा सके। अमेरिकी मीडिया में साल्वाडोर के स्कूल में आने और नहीं आने की दो खबरें छपी। मंगलवार की दोपहर साल्वाडोर रामोस अपने बचपन के स्कूल जाता है। स्कूल जाने से पहले घर में अपनी दादी को गोली मार देता है। उसके बाद स्कूल के बच्चों पर गोलियां चलाने लगता है। साल्वाडोर रामोस की बंदूक से 19 बच्चे मारे गए हैं। इनकी उम्र 7 से 10 साल बताई जाती है। ये सभी 2री, 3री और 4थी कक्षा में पढ़ते थे। साल्वाडोर ने स्कूल की एक टीचर इवा मिरेलेस की भी हत्या कर दी है। अंत में पुलिस के हाथों हत्यारा साल्वाडोर रामोस भी मारा गया। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे हिस्पैनिक मूल के हैं और उनकी संख्या 600 है। दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका से आने वाले किसी को भी शक के निगाह से देखे जाने की राजनीति है। इन्हें हिस्पैनिक कहा जाता है। लोगों को लगता है कि अवैध रूप से आ रहे हिस्पैनिकों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इस घटना से अमेरिका में कोहराम मचा हुआ है। रॉब एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता से डीएनए सैंपल लिए गए हैं ताकि बच्चों से मिलान कर देखा जा सके कि किसके बच्चे की हत्या हुई है। यह सब कितना भयावह है, मगर अमेरिका ऐसी कई भयावह घटनाओं से निकलकर सामान्य होता रहा है और हिंसा के पीछे के कारणों का ठीक से सामना नहीं कर सका, ना उपाय सुझा सका। हिंसा से आप आधी अधूरी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। दूसरे देशों पर, दूसरे समुदायों पर युद्ध थोपने की नीति भी उसी समाज में सही ठहराई जाती है। जिस समाज में हिंसा की जड़ें गहरी होती हैं, जहां लोग तरह तरह से हिंसा को सही ठहराते हैं, भारत में ऐसे नगीने से आप कभी भी टकरा सकते हैं, जो इन दिनों बदले का मंत्र सबके कान में फूंके जा रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि दुनिया में ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। राष्ट्रपति बाइडन को पता होना चाहिए कि इस साल अमेरिका में स्कूलों में ही गोली चलने की ये 28वीं घटना है। टेक्सास की घटना से पहले 27 बार स्कूलों में इस साल गोलियां चल चुकी हैं। 2018 से लेकर आज तक स्कूलों में गोलीबारी की 119 घटनाएं हो चुकी हैं। 2021 में 34 बार स्कूलों में गोली चलने की घटना हुई थी, जो सबसे अधिक है। 2019 और 2018 में दोनों ही साल स्कूलों में गोली चलने की 24-24 घटनाएं हुई थीं। दिसंबर 2012 में एक बंदूकधारी ने सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल में घुसकर 26 लोगों को मार दिया था। इनमें से कई बच्चे थे। यह घटना कनेक्टिकट के न्यू टाउन की है। इस घटना का मुख्य आरोपी एडम लांजा 20 साल का था। अपने घर से 3 बंदूकें लेकर स्कूल चला आया। 2018 में पार्कलैंड के मार्जोरी स्टोनमन डगलस हाई स्कूल में 17 बच्चों और शिक्षकों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद भी राष्ट्रपति जो बाइडन कैसे कह सकते हैं कि टेक्सास की जैसी घटनाएं दुनिया में अपवाद हैं? यह याद करने का समय तो नहीं है, मगर ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, अमेरिका में भी और दूसरे देशों में भी। दिसंबर 2014 में पाकिस्तान के पेशावर में भी एक स्कूल पर आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले में 132 बच्चों की हत्या हुई थी। इसके अलावा स्कूल के 10 कर्मचारी भी मारे गए थे। 100 से ज्यादा बच्चे घायल हुए थे। तालिबानी आतंकवादी स्कूलों में घुस गए और बेंचों के नीचे छिपे बच्चों को निकालकर मारने लगे। यह कोई साधारण स्कूल नहीं था। बल्कि आर्मी पब्लिक स्कूल था। मारे गए ज्यादातर छात्र 12 से 16 साल के थे। अब वही दुनिया तालिबान से मिलकर अफगानिस्तान में सरकार चला रही है। अमेरिका में कई जगहों पर बिना लाइसेंस के ही लोग बंदूक खरीद लेते हैं। मॉल में बंदूकें मिलती हैं और कोई भी खरीद सकता है। अमेरिकी संविधान अपने नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार देता है। टेक्सास में करीब 46% लोगों के पास बंदूकें हैं, बल्कि टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट को इस बात के लिए निशाना बनाया जा रहा है कि वे बंदूक रखने के नियमों को और आसान बनाना चाहते हैं कि लोग बिना लाइसेंस के, बिना बैकग्राउंड चेकिंग के बंदूक खरीद लें। रिपब्लिकन गवर्नर ने कहा था कि तमाम आपत्तियों के बाद भी इस बिल पर वे दस्तखत करेंगे और कानून बनाएंगे। अमेरिका में बंदूक बनाने वाली कंपनियों का भी एक खेल है, उनका रैकेट है, धंधा चलता रहे, इसलिए ये कंपनियां नहीं चाहती कि बंदूक खरीदना मुश्किल हो। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जनता से अपील कर रहे हैं कि वे बंदूक लॉबी पर दबाव डालें। इस खेल को हिंदी में समझिए, सरकार का कंपनियों पर बस नहीं है, सरकार जनता से कह रही है कि वो कंपनियों पर दबाव डाले, यानी कंपनियां सरकार की माई बाप बन गई हैं। यही कारण है कि टेक्सास की घटना के बाद कनेक्टिकट के प्रतिनिधि क्रिस मर्फी अपने भाषण में उत्तेजित नजर आए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हैं यहां। 2012 में उनके ही राज्य के स्कूल सैंडी हुक्स में गोली मारकर बच्चों की हत्या की गई थी, जो अमेरिकी इतिहास की एक बड़ी घटना है।
14 kids dead in an elementary school in Texas right now. What are we doing? What are we doing? Just days after a shooter walked into a grocery store to gun down African American patrons, we have another Sandy Hook on our hands. What are we doing? There have been more mass shootings than days in the year. Our kids are living in fear every single time they set foot in a classroom because they think they're going to be next. What are we doing? Why do you spend all this time running for the United States Senate? Why do you go through all the hassle of getting this job, of putting yourself in a position of authority, if your answer is that as this slaughter increases, as our kids run for their lives, we do nothing? What are we doing? Why are you here?
बंदूक रखना एक बड़ा मसला है, मगर बंदूक चलाने के पीछे के कारणों को आप अनदेखा नहीं कर सकते। हमलावर मनोरोगी भी हो सकता है और नफरती भी। इन्हें केवल बंदूक आसानी से नहीं मिल रही, बल्कि उससे भी आसानी से मिल रही है वह विचारधारा जो गर्व का गुब्बारा फुलाती रहती है, जिसका आधार इस बात पर टिका है कि एक या अनेक समुदायों से नफरत करना है, उससे खुद को सर्वोच्च साबित करना है। चौदह मई को न्यूयॉर्क के बफलो शहर में 18 साल का एक लड़का पैटन एस जेंड्रॉन बंदूक लेकर एक सुपरमार्केट में घुस गया और 10 लोगों को मार देता है। इस हमले के लिए वो 200 मील की यात्रा तय करके आता है, इंटरनेट पर हत्या का सीधा प्रसारण करता है। यह लड़का ब्लैक समाज के प्रति नफरत से भरा हुआ था। इसने 180 पन्नों का एक दस्तावेज भी पोस्ट किया है, जिसमें व्हाइट की महानता और सर्वोच्चता की फालतू और फर्जी बातें लिखी हुई हैं। इसमें तरह तरह से इस बात का भूत खड़ा किया गया है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब ब्लैक की आबादी अधिक होगी और व्हाइट कम हो जाएंगे, ब्लैक व्हाइट की जगह ले लेंगे। इसे अंग्रेजी में व्हाइट रिप्लेसमेंट थियरी कहते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ब्लैक को मार देना चाहिए, इसकी ये सोच है। नफरत की सोच ने 18 साल के जेंड्रॉन को हत्यारा बना दिया। जेंड्रॉन ने लिखा है कि वह कई साल से ब्लैक की हत्या के सपने देख रहा है, उसकी तैयारी कर रहा था।
He went and reloaded. And he shot my mom again.
इस प्रसंग से आपको भारत की याद आ सकती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड अंकिलों के पोस्ट याद आ रहे होंगे, जो दिन रात गर्व करो का जाप रटते रहते हैं और भूत खड़ा करते हैं कि एक दिन दूसरा समुदाय उन पर हावी हो जाएगा। इसलिए गर्व करते रहो। तमाम आंकड़ों में मुस्लिम आबादी की रफ्तार थमती नजर आती है, मगर भूत खड़ा करने वाले ऐसे ऐसे प्रपंच रचते हैं कि कोई भी दिन रात मुसलमानों के प्रति नफरत और भय को पाल सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि 2011 से दुनिया भर में व्हाइट रिप्लेसमेंट की थ्योरी के असर में 160 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं।
Saw him shooting. He shot a woman. He shot a deacon. He shot another woman, and then he went in the store and started shooting again. So I don't know who he was shooting at because he shot at least eight people.
जिस तरह से टेक्सास के स्कूल में गोलीबारी की घटना की तुलना कनेक्टिकट के स्कूल की घटना से हो रही है, उसी तरह बफलो शहर की गोलीबारी की इस घटना की तुलना 2015 में चार्ल्सटन के एक चर्च में 9 ब्लैक की हत्या से की जा रही है। जांच में यह बात सामने आई है कि बफलो का 18 वर्षीय हत्यारा न्यूजीलैंड की 2 मस्जिदों में गोलीबारी की घटना से प्रेरित हुआ था। 2019 में न्यूजीलैंड की 2 मस्जिदों में गोलीबारी की इस घटना में 51 से अधिक मुसलमान मारे गए थे। एक और अंतर है, जब न्यूजीलैंड में हमला हुआ तब वहां की प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित किया। अमेरिका में जब भी ऐसी घटना होती है वहां के राष्ट्रपति का बयान जरूर आता है। मैं इसकी तुलना भारत के प्रधानमंत्री से नहीं कर रहा, जो ऐसे कई मौके पर चुप रह जाते हैं, बल्कि कर ही दिया।
To lose a child is like having a piece of your soul ripped away. There's a hollowness in your chest, you feel like you're being sucked into it. And never going to be able to get out. Suffocating. It's never quite the same. As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage. In America, evil will not win, I promise you. Hate will not prevail. And white supremacy will not have the last word. We are the most multiracial, most dynamic nation in the history of the world. Now's the time for the people of all races, from every background, to speak up as a majority in America and reject white supremacy.
WhatsApp replacement theory aap aasani se samajh sakte hain. ऐसी बहसों से समाज में जहर फैलाया जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया में आए दिन एक समुदाय की आबादी को लेकर डिबेट पैदा किया जाता है और भय भी। गोदी मीडिया प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर ऐसे सवालों को समाज के भीतर वैध बनाता रहता है। आपको गोदी मीडिया की कुछ पुरानी हेडलाइन दिखाना चाहता हूं, जो डिबेट के समय चैनलों के स्क्रीन पर लगाई गई थी। कुदरत बहाना है, मुस्लिम आबादी बढ़ाना है, वही क्वेश्चन मार्क। मुस्लिम आबादी पर आरएसएस का मंथन, विश्व की धार्मिक जनसंख्या का टेस्ट, विल मुस्लिम्स सरपास हिंदू पॉपुलेशन इन इंडिया, वही प्रश्नवाचक चिन्ह। व्हाई हिंदू पॉपुलेशन एनकाउंटर्स अ ड्रामेटिक फॉल, आ गया ना प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। जनसंख्या नियंत्रण बहाना, मुसलमान निशाना, प्रश्नवाचक चिन्ह। जर्मनी तक पहुंचा मुस्लिम तुष्टीकरण, क्वेश्चन मार्क। किसी धर्म, किसी नस्ल या किसी जाति की सर्वोच्चता का नारा मूर्खता का महागलियारा है। इसकी गली में जो प्रवेश करता है हत्यारा बनकर निकलता है। कुछ लोग बंदूक उठा लेते हैं तो कुछ लोग हिंसा को सही ठहराने और माहौल बनाने में लग जाते हैं। गोदी मीडिया पर किसी ना किसी बहाने धर्म की चर्चा होती रहती है। बीइंग ह्यूमन और क्रूर दर्शन के रमित वर्मा ने केवल मई महीने में कुछ चैनलों के 2 मुख्य डिबेट शो का अध्ययन किया है। देखने की कोशिश की है कि इन चैनलों के पिछले 15 डिबेट शो में धर्म से जुड़े कितने मुद्दे थे। कुल 5 चैनलों के पिछले 150 डिबेट के टॉपिक का रमित ने अध्ययन किया है। अध्ययन में यह निकलकर आया है कि 150 डिबेट में से 138 डिबेट का संबंध किसी ना किसी तरीके से धर्म से रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से भी रहा है। जिस वक्त महंगाई चरम पर हो, गर्मी हो, असम में बाढ़ हो, उस वक्त केवल धर्म से जुड़े मुद्दे पर डिबेट हो रहे हैं। अमेरिका की घटना, भारत की घटना, समानता हूबहू भले ना हो लेकिन अंतर बहुत गहरा नहीं है। धर्म के नाम पर जब न्यूज चैनल रक्षक बन जाएं, तो धर्म की चिंता मत कीजिए, अपनी कीजिए। जो चैनल और एंकर पत्रकारिता के धर्म की रक्षा नहीं कर पाए, वे आपके धर्म की रक्षा कर रहे हैं, इस भ्रम से बाहर आ जाइए। इस तरह के डिबेट में एंकर की भाषा में धार्मिक सर्वोच्चता का बखान दिखेगा, धर्म की आड़ में उनके तेवर आक्रामक हो जाते हैं, पत्रकार नजर आने लगते हैं और इसी बहाने आम लोगों की समस्याओं को सामने आने से रोक देते हैं। धर्म का मामला समझकर आम लोग आंखें फाड़ फाड़ कर इस तरह से देखने लग जाते हैं। चैनलों की तरह हिंदी के कई अखबार, आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की मेहनत को जोड़ लीजिए तो पूरा समाज ही धर्म के टॉपिक से घिरा हुआ है। इसके आधार पर एक धर्म से नफरत किया जा रहा है या उस पर सर्वोच्चता साबित की जा रही है, इसका नतीजा आप अभी ही देख रहे हैं, पहले भी देख चुके हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में भंवरलाल चत्तर जैन को 14 बार थप्पड़ मारने वाला दिनेश कुशवाहा मनसा से बीजेपी की पूर्व पार्षद का पति है। मानसिक रूप से बीमार भंवरलाल अपना नाम तक नहीं बोल पाए, कुछ बुदबुदाते हैं लेकिन दिनेश कुशवाहा कहता है मोहम्मद नाम है और मारने लगता है। अगले दिन भंवरलाल जैन का शव बरामद होता है। आरोपी विजय कुशवाहा भाजपा युवा मोर्चा और नगर इकाई में पदाधिकारी रहा है। मृतक भंवरलाल का परिवार भी बीजेपी से जुड़ा है। यह वीडियो दिनेश ने ही वायरल किया। क्या दिनेश को यह लगा कि ऐसी करतूत का वीडियो वायरल करना अब अच्छी बात है, लोग तारीफ करेंगे? क्या भंवरलाल जैन की जुबान से मोहम्मद निकलने के कारण या ऐसा भ्रम होने के कारण दिनेश के जहन में हिंसा की भावना तेज होती गई और वह कथित रूप से हत्यारा बन गया? भंवरलाल जैन को मारने वाला दिनेश कुशवाहा और न्यूयॉर्क के बफलो शहर के सुपरमार्केट में गोली चलाने वाला जेंड्रॉन, दोनों के जहन में नफरत एक ही जगह से आती लगती है, स्वयं की सर्वोच्चता और दूसरे के प्रति घृणा से। भंवरलाल चत्तर जैन की हत्या का इंसाफ केवल आरोपी का पकड़ा जाना, जेल जाना नहीं है, बल्कि उस विचारधारा की तह तक जाना भी है जिसने एक व्यक्ति को हत्यारा बना दिया। यह कोई पहली घटना नहीं है। अखलाक का दायां हाथ आरी से काट दिया गया। अखलाक ने आरोप लगाया था कि शराब के नशे में दो लोग उसे मारने लगे। जब देखा कि अखलाक के दाहिने हाथ पर 786 लिखा है, वह मुसलमान है, तो उसका दायां हाथ ही काट दिया। यह घटना 23 अगस्त 2020 की है। जब सोशल मीडिया में हंगामा हुआ तब जाकर 7 सितंबर कितने दिनों के बाद 7 सितंबर 2020 के दिन पानीपत की पुलिस ने एफआईआर की। अखलाक की एफआईआर के तुरंत बाद दोनों आरोपियों ने भी उसके खिलाफ एफआईआर करा दी। उस पर 7 साल के बच्चे के कथित यौन शोषण का आरोप लगा दिया और पॉस्को के तहत मामला दर्ज हो गया। हरियाणा पुलिस ने जनवरी 2021 में अखलाक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अखलाक के हाथ काटने वालों को आज तक सजा नहीं मिली है। उल्टा अखलाक को 14 महीने तक उस आरोप में जेल में रहना पड़ा जिसके खिलाफ पुलिस के जुटाए सबूत अदालत में टिक नहीं सके। जो गवाह थे अदालत को दिख गया कि सिखाया पढ़ाया गया है। यही नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के पोस्को जज सुप्रीत सिंह ने कहा कि पहले तो एफआईआर काफी देर से कराई गई और उसी दिन कराई गई जब अखलाक ने एफआईआर कराई। यही नहीं, पीड़ित बच्चे की चिकित्सा जांच नहीं हुई। इस प्रकार कोर्ट ने अखलाक को बरी कर दिया। अखलाक के भाई ने इस फैसले पर अपना बयान दिया है।
सही तो मैं यही कहूंगा, सच्चाई की जीत हुई है, सही तो यही है, लेकिन उन लोगों को अभी तक के कुछ भी नहीं हो सका, अभी तक के कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि वो पुलिस उनके बचाव में लगी हुई है। पुलिस ने तो अभी तक के उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया, ना ही कोर्ट में चार्जशीट जमा की है अभी तक के, और ना ही डीएनए रिपोर्ट आई है, और पुलिस बार बार माल्या उनको बचा रही है। इखलाक अपना केस जब जीतेगा, जब हमारी चार्जशीट कोर्ट में जमा हो जाएगी, चार्जशीट जमा होने के बाद फिर इंशाल्लाह हम इस केस को दिलो जान से लड़ेंगे।
अखलाक नाई का काम करता था, उसका एक हाथ कट गया, अब वो ये काम कभी नहीं कर पाएगा। जिन लोगों ने अखलाक का हाथ काट दिया उन्हें आज तक सजा नहीं हुई। उस मामले में पुलिस ने चार्जशीट तक दायर नहीं किया है, अखलाक के मामले में ट्रायल तक पूरा हो गया।
सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें कोर्ट ने नोट करी, मैं ये नोट करी कि जो उन्होंने एफआईआर हमारे खिलाफ दर्ज कराई उसमें वो कहते हैं कि जी 23-24 की इंटरवीनिंग नाइट का एक वाक्या है, लेकिन वो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं 9 तारीख को, अगले महीने की 9 तारीख को। तो कोर्ट ने उनसे जब एक्सप्लेनेशन मांगा इस चीज का, वो ये कहते रहे कि जी हम तो इसको शर्म के मारे ये नहीं बात, ये बातें हमने किसी के सामने नहीं की। लेकिन जब कोर्ट ने केयरफुली फाइल को गो थ्रू किया और हमारे डिफेंस को सुना, जो कि हमारा डिफेंस था कि हमारा हाथ जो काटा गया है उनके घर में मौजूद एक आरा मशीन से काटा गया है, तो एक डॉक्यूमेंट जो पुलिस ने प्रिपेयर किया इस केस में, उसमें पॉइंट ए पर एग्जिबिट है जो रफ साइट प्लान आईओ ने प्रिपेयर किया, उसमें पॉइंट ए पर आरा मशीन मौजूद है। ये पॉइंट गौर किया कोर्ट ने भी कि उसमें पॉइंट ए पर आरा मशीन मौजूद है, और बच्चा ने जो मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दिए उसमें भी वो कहता है कि जी मेरे फादर जो हैं वो लकड़ी का काम करते हैं, जबकि कंप्लेनेंट का कहना था, जो इस केस में कंप्लेनेंट थे उनका कहना था कि हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, इससे कोई लेना देना ही नहीं है हमारा। और दूसरी बात सबसे इंटरेस्टिंगली सर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें ये हुआ कि उन्होंने जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने बच्चे के मेडिकल भी नहीं कराते वो 27 तारीख तक, दरखास्त भी नहीं देते अगले महीने की 9 तारीख तक, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमने 24 तारीख को बच्चे के ना फोटोग्राफ्स बनवा लिए थे। तो कोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया स्पेशली अपनी जजमेंट में लिखा कि अगर आपका कोई मतलब ही नहीं था दरखास्त देने का या आप चाहते ही नहीं थे उनके खिलाफ कार्रवाई करना, तो ये 24 तारीख को फोटोग्राफ बनवाना बिल्कुल हजम करने वाली बात नहीं है, जो कि एक झूठी स्टोरी आपने बनाई है। आप बिल्कुल फेल हुए हैं इसको एक्सप्लेन करने में, बिल्कुल फेल हुए हैं आप डिले को एक्सप्लेन करने में, और प्रोसिक्यूशन और पुलिस ने जो इसमें अब्यूज ऑफ पावर किया है वो एक देखने वाली बात रही कोर्ट की जजमेंट में। और भी बहुत सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया था, ये कुछ मेन पॉइंट्स ये थे। और इसमें मैं सर इंटरेस्टिंगली एक बात और बताना चाहूंगा, इतनी मारपीट इखलाक के साथ करी गई कि उसका मेंटल स्टेट जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है फिलहाल। मैं अगर चाहता या हम चाहते तो इसको मिसट्रायल भी क्लेम कर सकते थे, क्योंकि एज पर सीआरपीसी यहाँ पे प्रोविजन है कि कोई मेंटल स्टेट जिसकी ठीक नहीं हो उसको मिसट्रायल पे बरी किया जा सकता है। लेकिन हमने इसको कानून के तौर पे लड़ना और जो कि सच्चाई के तौर पर इसको लड़ना ज्यादा बेटर समझा। कोर्ट ने भी उन पॉइंटों को नोट करते हुए हमें बरी किया।
हमने इन दोनों घटनाओं का जिक्र अमेरिका के टेक्सास में हुई गोलीबारी की घटना के संदर्भ में किया है, तो एक संदर्भ का जिक्र अभी बाकी है। ये उन परिवारों के ट्वीट हैं, उन लोगों के ट्वीट हैं जिनके बच्चे 2012 में मारे गए थे। सैंडी हुक्स स्कूल के बच्चों के माता पिता ने टेक्सास के रॉब एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के माता पिता को सांत्वना भेजी है। यह भी एक संस्कार है, हिंसा के शिकार माता पिता 10 साल बाद हिंसा के शिकार माता पिता का दुख बांट रहे हैं। टेक्सास की घटना ने उनके भीतर का दर्द उभार दिया है, वे अपने बच्चों की याद में डूब गए हैं, लेकिन टेक्सास के माता पिता के दर्द को भी समझ रहे हैं। इस घटना के बाद कई और माता पिता ट्विटर पर लिख रहे हैं कि उनके बच्चे अब इसका अभ्यास करने लगे हैं कि स्कूल में गोली चल जाएगी तो क्या करेंगे। भंवरलाल जैन की हत्या और अखलाक के हाथ काट दिए जाने की घटना से एक समुदाय के भीतर क्या इसी तरह के ख्याल नहीं उभरते होंगे, लेकिन क्या उन्हें कोई इस तरह से दिलासा दे रहा है? मैं यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी से नहीं, आपसे पूछ रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मई से सितंबर तक गरीबों को दी जाने वाली फ्री राशन में 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की जगह अब 5 किलोग्राम चावल ही देने का फैसला किया है। गरीब लोगों का घर अब कैसे चलेगा, राशन मिल रहा है या नहीं, इसकी किसे परवाह है?
हापुड़ के दिनेश को इस महीने तो चावल के साथ गेहूं मिल गया है, लेकिन अगले महीने से इनको 5 किलो चावल ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस पत्र में कहा गया है कि मई से सितंबर तक गेहूं की जगह 5 किलो चावल ही दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत करीब 14 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है।
गेहूं नहीं मिलेगा, चावल मिलेगा सर, इससे तो दिक्कत होगी बहुत। अच्छा, तो रोटी ज्यादा खाते हैं, चावल तो हफ्ते में एक बार बनता है।
क्या परेशानी मान रहे हैं सर? गेहूं
नहीं मिलेगा तो थोड़ा
क्या क्या मिला इस बार आप लोगों को?
गेहूं, चावल, रिफाइंड,
अच्छा,
नमक की थैली और चने।
आपको पता है अगली बार से आप लोगों को अब गेहूं नहीं मिलेगा?
गेहूं नहीं मिलेगा तो परेशानी होगी। अच्छा। क्योंकि अधिकांश लोग गेहूं खाते हैं।
अच्छा,
लेकिन गरीबों की थाली से रोटी अचानक क्यों गायब हो जाएगी? इसके लिए आपको लेकर चलते हैं महीना भर पहले की अपनी रिपोर्ट की ओर। 17 अप्रैल को एनडीटीवी ने दिखाया था कि गेहूं के सरकारी खरीद केंद्र पर सन्नाटा है और किसानों की ट्रैक्टर ट्रालियों की लंबी कतार निजी आटा मिलों के बाहर लगी है। लेकिन सरकार ने करीब महीना भर तक इस ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि खुद खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गेहूं निर्यात को सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताया।
हमारे अधिकारियों के साथ चर्चा की, हमारी लैब्स विजिट की और एक पूरा उनके कैबिनेट का डिसीजन आज उन्होंने स्वयं ट्वीट किया, कैबिनेट का डिसीजन जिसमें उन्होंने कहा है कि सब देखने के बाद हमें खुशी है कि अब भारत से अनाज गेहूं इजिप्ट में भी जा सके।
लेकिन कुछ दिन बाद ही सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और 13 मई को गेहूं निर्यात पर रोक लगा दी गई। लेकिन तब तक निजी कंपनियों ने 50 से लेकर 100 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा देकर किसानों का गेहूं खरीद लिया था। अब हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां पिछले साल 30 अप्रैल तक करीब 11 लाख टन गेहूं खरीदा गया था, वहीं इस साल महज 1,30,000 टन ही सरकारी खरीद हुई है। 30 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में लक्ष्य के मुकाबले महज 2 से 5% ही गेहूं की सरकारी खरीद हुई। पूरे देश के आंकड़ों की अगर बात करें तो सरकार का अनुमान 4.44 करोड़ टन गेहूं खरीद का था, लेकिन 20 मई तक महज 1,81,00,000 टन ही गेहूं खरीदा गया। लिहाजा सरकार ने 31 मई तक गेहूं की सरकारी खरीद बढ़ा दी है।
अगर पुराने अनुमान से हम देखें तो करीब 220 लाख टन गेहूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए जरूरत होती है और करीब 260 लाख टन गेहूं सामान्य जो राशन प्रणाली है उसके लिए जमा है, जबकि सरकार के पास किसी भी तरीके से करीब 370 या 380 लाख टन गेहूं भी होना बकाया और हिस्सा करीब तक। ऐसे में उसके पास यही विकल्प था कि वो जो राशन में और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज देती है उसमें गेहूं की मात्रा घटा दे और उसको चावल से उसको विकल्प के रूप में उसकी आपूर्ति करे, और यही सरकार ने किया है।
यही नहीं, सरकार जब तक गेहूं के निर्यात पर रोक लगाती तब तक 70 लाख टन गेहूं के निर्यात का सौदा भी हो चुका था।
कहां रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में गेहूं का निर्यात करके भारत सरकार वाहवाही बटोरना चाहती थी, लेकिन लग ऐसा रहा है कि सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही और इस बीच निजी कंपनियां किसानों को ज्यादा पैसा देकर गेहूं खरीदती रही। अब मुनाफा प्राइवेट कंपनियां और गेहूं की कमी की मार गरीबों को झेलनी पड़ सकती है, जिसकी शुरुआत पीडीएस के सिस्टम से हो चुकी है।
हापुड़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आतंक की फंडिंग के मामले में दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले यासीन मलिक ने इस मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया था। इनमें गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून यूएपीए के तहत आतंक के लिए फंडिंग का केस भी शामिल है। एनआईए ने इस मामले में यासीन मलिक के लिए अधिकतम फांसी की सजा की मांग की थी, जबकि यासीन मलिक के वकील ने उम्र कैद की सजा के लिए दलील दी। कोर्ट ने अपने फैसले में 2 मामलों में यासीन मलिक को उम्र कैद, 5 मामलों में 10-10 साल की सख्त कारावास की सजा सुनाई। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके अलावा यासीन मलिक पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के साथ अपना 30 साल पुराना नाता तोड़ दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे सिब्बल ने एक निर्दलीय के तौर पर समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा जाने का फैसला किया है। इसके लिए सिब्बल ने लखनऊ में राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद कपिल सिब्बल ने जानकारी दी कि उन्होंने 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। समाजवादी पार्टी के समर्थन से कपिल सिब्बल के नामांकन के पीछे सपा नेता आजम खान का अहम योगदान माना जा रहा है।
कपिल सिब्बल की ही दलीलों के बाद आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल को राज्यसभा टिकट न देकर आजम खान को अखिलेश यादव नाराज नहीं करना चाहते थे। कपिल सिब्बल कांग्रेस के उन 23 वरिष्ठ असंतुष्ट नेताओं में शामिल रहे जिन्हें G23 नाम से जाना जाता है। ऐसे दौर में जब कांग्रेस नए सिरे से खड़े होने के लिए आत्ममंथन के दौर से गुजर रही है, कपिल सिब्बल का पार्टी छोड़ना एक बड़ा झटका है। खाने पीने की चीजों की महंगाई को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ नए कदमों का ऐलान किया है। इसके तहत गेहूं के निर्यात पर पाबंदी और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जा चुकी है। अब कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के 20 लाख मीट्रिक टन तक के आयात को 2 साल के लिए ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। ये फैसला बुधवार से लागू हो गया। भारत अपनी जरूरत का करीब 90% सूरजमुखी तेल यूक्रेन और रूस से आयात करता था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई में बाधा आई और अब भारतीय कंपनियां और आयातक सूरजमुखी के तेल के आयात के लिए नए देश और बाजारों की तलाश में हैं। केंद्र सरकार ने एक और फैसला लेते हुए चीनी का अधिकतम सालाना निर्यात 100 लाख टन तय किया है। अक्टूबर नवंबर के दौरान त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और दाम पर काबू रखने के लिए कदम उठाया गया है। जातिवार जनगणना के मुद्दे पर सभी दलों की राय लेने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 जून की दोपहर 4 बजे सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सभी पार्टियों को बैठक के एजेंडा की जानकारी दे दी गई है। चौधरी ने कहा कि जातिवार जनगणना के लिए राज्य विधानसभा के 2 प्रस्तावों को केंद्र द्वारा खारिज किए जाने के बाद बिहार सरकार ने इस मुद्दे पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। पिछले साल जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में देश में जातिवार जनगणना कराने से इनकार कर दिया था, तो नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की योजना का ऐलान किया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि जातिवार जनगणना एक वैध मांग है जिससे नीति निर्माताओं को देश में पिछड़े वर्ग के लिए कल्याण योजनाओं को बनाने में मदद मिलेगी। नीतीश कुमार इस सिलसिले में पिछले साल अगस्त में 11 सदस्यों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जातिवार जनगणना के उनके विचार को खारिज कर दिया था।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।